السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. سورة الغاشية، سورة الغاشية کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ وہ سورت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو اور سورہ آلہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے عیدین میں اور جمعے میں، ٹھیک ہے، یعنی بڑے مجموعوں میں، بڑے گیدرنگز میں. اس کا مطلب ہے ان دو صورتوں میں ایسے ریمائنڈرز ہیں جو کہ انسان کو بار بار ضرورت جن کی پڑتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں بھی وہ ریمائنڈرز ہیں. اور الغاشیہ کا معنی کیا ہے؟ ڈھانپنے والی. اور اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، یہ مکی سورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن سورہ آلہ اور غاشیہ تو پڑھتے تھے، کبھی کبھی سورہ جمعہ پہلی رکعت میں اور سورت الغاشیہ دوسری رکعت میں بھی پڑھا کرتے تھے. اس سورت میں آپ دیکھیں گے بہت زیادہ یعنی جہنم کی لوگوں کا ذکر ہے شروع میں، اور اس کے بعد جنتیوں کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے بیان فرمائی ہیں، اور آخر میں انذار بالآخرہ، آخرت کے جو احوال ہیں ان کے ذریعے بھی انذار بھی فرمایا گیا ہے. ذکر کا، سوری، آخرت کا نہیں، کہ انسان کو تذکیر کا کہا گیا ہے، نصیحت کرتے رہو، اس چیز کی ہدایت کی گئی ہے. اور پچھلی صورت میں بھی ہم نے تذکیر کا پڑھا، اس صورت میں بھی تذکیر کی بات آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاك حدیث الغاشیہ، هل کیا، اتا آئی، کا آپ کے پاس، حدیث خبر، الغاشیہ ڈھانپ لینے والی کی. اب میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں اتا اور جاء میں فرق. جا آ جب آتا ہے جب کہ کوئی بہت بھاری چیز کی بات ہو رہی ہو، بہت بڑی چیز کی، اور اتا آنا، یہ بھی آنا ہے اور جا آ بھی آنا ہے، لیکن آنا مگر اتنی یعنی اتنی بڑی بات کے لیے نہیں ہوتا، اتنی بھاری بات کے لیے نہیں ہوتا، یہ آپ کہہ سکتے. جا آ زیادہ اس میں بھاری چیز کے لیے آتا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پہ چونکہ خبر کی بات ہے، قیامت کی بات نہیں آ رہی. پہلے جاءت التامۃ الکبریٰ آیا، جاءت الصاخۃ آیا، کیونکہ وہ قیامت کے لیے چیزیں تھیں. یہاں پہ حدیث الغاشیہ ہے، خبر ہے صرف، تو خبر پھر بھی لائٹ ہے، لیکن جب یہ چیز آئے گی تو وہ بہت بھاری ہوگی. خبر سننا تو آسان ہی ہے، اس لیے لوگ خبر سنتے رہتے ہیں اور پھر بھی اثر نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنی مشکل نہیں ہے لوگوں کے لیے. تو یہاں پر ایک سوالیہ انداز ہے، یعنی کیا آ گئی ہے تمہارے پاس؟ یہ ایک تعجب بھی ہے اس کے اندر، کیا آ گئی تمہارے پاس خبر ڈھانپ لینے والی کی، یعنی پھر بھی تمہارا یہ حال ہے. جیسے ایک ماں کہے کیا میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا، میں نے تمہیں سمجھایا نہیں ہے، یعنی پھر بھی تم یہ کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سوالیہ انداز میں بات فرمائی ہے، کیا آ نہیں گئی خبر ان کے پاس، کیا آ گئی ہے، یہ پھر بھی ان کا یہ حال ہے کہ ٹسے مس نہیں ہوتے. اور حدیث کہتے ہیں نئی بات کو بھی، اور حدیث کہتے ہیں اس بات کو بھی جس کا انسان کو پتہ ہو لیکن اس کے ذہن سے نکل چکی ہو، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. تو وہ بھی کیونکہ نئی لگتی ہے نا، کیونکہ اس کو یاد ہی نہیں تھی، اب یاد کرایا گیا تو پھر اس کو بھی نئی بات ہی لگی وہ. اور غاشیہ غشی سے ہے، غشی کہتے ہیں نا، غشی کا دورہ پڑ گیا، تو غشی بھی جو ہوتی ہے وہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، انسان کو کوئی ہوش ہی نہیں رہتا.
इतनी यानी उसके ऊपर छा जाती है, ढांप लेती है। तो वो दिन जो है ना, वो अलगाशिया है, कयामत का दिन, उसकी खबर आ गई। और वो ढांप लेने वाला क्यों है? हमने इसके बहुत सारे नाम पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे एक और नाम जब गाशिया आया तो इसका मतलब क्या है? ढांप लेने वाली। तो ये कयामत के लिए है, क्योंकि कयामत हर चीज को ढांप लेगी, कोई चीज उससे बाहर नहीं होगी। जाहिर है, जब आसमान के ऊपर तोड़ फोड़ हो रही है, आसमान फट रहा है, आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं और सूरज चांद बेनूर हो गए हैं, सितारे टूट रहे हैं, तो जब आसमानों का ये हाल होगा, इंसान आसमानों के नीचे ही रहते हैं ना, कहीं आसमान से बाहर तो नहीं निकल सकता, तो इंसान के ऊपर भी जाहिर है चीज असर करेगी। जब जमीन पर जलजला होगा, जिस जमीन के ऊपर उसकी जिंदगी का इन्हिसार है, तो कयामत के हौलनाक मनाजिर और दहशतनाक अहवाल जो हैं वो लोगों को ढांप लेंगे। और एक इससे मुराद ये भी ली गई है, अलगाशिया से मुराद कि ये जहन्नुम के बारे में है, क्योंकि सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला ने फरमाया, तवशा वुजूहा हुमुन्नार, ढांप लेगी उनके चेहरों को आग। और आगे भी चूंकि आग वालों का जिक्र है, इसलिए बाज ने इससे मुराद जहन्नुम ली है। अब अलगाशिया तो सिफत है, तो मौसूफ क्या है? मौसूफ को मेंशन नहीं किया गया। ढांप लेगी किसको? तो इसका मतलब है कि पूरी इंसानियत मुराद है, और जो भी होंगे सबको ढांप लेगी। हर चीज को ढांप लेगी, तो ढांप लेगी, वरना इंसान होता है ना कि जब इंसान बात करता है ढांप लेगी किसको, एकदम फौरन ख्याल आता है कि किसको ढांप लेगी, तो यानी हर चीज को ढांप लेने वाली है ये गाशिया। तो यानी इंसान को क्या ये खबर मिल गई है कि कितनी बड़ी आफत आने वाली है, कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, और पिछली सूरत का इख्तिताम किस पे हुआ था? बल तो सिरून अल हयात दुनिया, जो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हैं, जिनका हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, दुनिया की जिंदगी को तरजीह देना कोई ऐसी मामूली बात नहीं है कि जिस पे इंसान सोचे हाँ कोई बात नहीं, मैं तरजीह देता हूं तो इससे क्या फर्क पड़ा, क्या हो गया, फिर क्या हो गया अगर मैंने तरजीह दे दी, यानी ये उसको कोई बड़ी चीज नहीं समझता। जबकि हम सूरह नाजियात में पढ़ चुके हैं ना, फम्मा मन तगा व आथरल हयात दुनिया फ इन्नल जहीमा ही अल मावा, कि जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी, वो जहन्नुम उसका ठिकाना है। वहां पे हम ये बात पढ़ चुके हैं। तो अब एक लाइट टोन में बात शुरू हुई कि लोगों का ये हाल है ना कि तुम तरजीह देते हो दुनिया की जिंदगी को, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि उसका अंजाम क्या है। अब इस सूरत के अंदर उसके बाद ये बता दिया गया कि ये मामूली बात नहीं है। तुम्हारे तक पहुंची है खबर गाशिया की, यानी फिर पता चलेगा कि दुनिया की जिंदगी तरजीह देने का अंजाम क्या होता है। उस दिन सब समझ आ जाएगी हर एक को कि वो फिर जब ढांप लेगी हर चीज को, हर एक को ढांप लेगी, कोई उससे बच के नहीं जा सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि एक औरत की कुरान पढ़ने की आवाज आई, आप खड़े होकर सुनने लगे। उसने जब ये आयत पढ़ी, हल अता का हदीस उल गाशिया, यानी क्या तेरे पास ढांपने वाली कयामत की बात पहुंच गई? आपने फरमाया, नाम कद जया अनी, हाँ मेरे पास पहुंच गई, हाँ मेरे पास पहुंच गई है। आप तक पहुंची है ये खबर? अल्लाह अकबर। अब इस चीज के अंदर ही ना इंसान का दिल परेशान हो जाता है कि कौन सी चीज है जो छा जाएगी, हर चीज पे छा जाएगी। वजूह हुई यौम इदिन खाशिया, वो ऐसा दिन होगा, वजूह कुछ चेहरे या बाज चेहरे, यौम इदिन उस दिन, खाशिया जलील होने वाले होंगे, कुछ चेहरे ऐसे होंगे कि उनके ऊपर जिल्लत छा रही होगी। अच्छा, आप देखें चेहरों की बात खास तौर पे, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अब फिर चेहरों की बात आई, तो चेहरों की बात क्यों आती है? इसलिए कि चेहरा इंसान के अंदर को रिफ्लेक्ट करता है कि उसके अंदर क्या है, वो इंसान पे क्या गुजर रही है। एक थके हुए चेहरे को भी आप पहचान लेते हैं, परेशान चेहरे को भी, खुश चेहरे को भी पता चल जाता है कि ये इंसान अंदर से कितना खुश है, उसकी चेहरा बता रहा होता है। गमगीन है तो उसका चेहरा बता रहा होता है। तो अब यहां से आप देखेंगे आयत 7 तक जहन्नुम वालों का जिक्र है, और इसमें काफिर मुशरिक भी हैं, और वो भी जो मुसलमान अल्लाह के मुजरिम थे वो भी हैं, वो भी इसमें मुराद है। तो कुछ चेहरे उस दिन जलील हो रहे होंगे, उनके ऊपर जिल्लत छा रही होगी, वो झुके हुए होंगे, उनके ऊपर खौफ होगा, इतने खौफ ज्यादा होंगे उस दिन क्योंकि वो दिन इतना परेशानी का दिन है। और देखें इंसान जब ऐसे अहवाल को सुनता ही है तो परेशानी हो जाती है सिर्फ सुन के। सोचें जो देख रहा होगा उसका हाल क्या होगा, कि खौफ से इंसान जैसे पैरालाइज होने लगेगा। ये इतनी बड़ी आफत होगी, उसके सारे जिस्म पे इसका असर होगा, और चेहरा तो ऐसे होगा कि जिल्लत उस पे छा रही होगी। केला बता रहा होगा क्योंकि वो दिन है इसमें आवाजें दब जाएंगी, निगाहें झुकी होंगी और कोई आवाज नहीं होगी सिवाय सांस की आवाज के। यौम इस दिन से पता चला, उस दिन जब हशर के दिन खड़े होंगे लोग, ये उस वक्त की बात हो रही। अब झुक गए ना चेहरे, दुनिया में तो झुकते नहीं थे, दुनिया में तो इतराते फिरते थे। आमिला तो नासिबा, अमल करने वाले, मेहनत करने वाले नहीं, ऐसे चेहरे हैं जो अमल करने वाले, आमिला अमल करने, अमल से है, और अमल कर करके नासिबा थकने वाले, एग्जॉस्ट होने वाले। नसब करते हैं ना किस चीज को, फिक्स कर देते, गाड़ देते हैं। नहीं, इतने थके हुए कि सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे, गाड़ गए हैं वहीं, चल भी नहीं पा रहे। तो जब वो चुपचाप खड़े हुए हैं, जिल्लत उनके ऊपर छा रही है, उनकी हालत क्या है, वो थके मांदे हैं। क्यों थके मांदे हैं? दो इसकी वजूहात हैं जो उलमा ने बयान की है। एक वजह यह है कि वो इसलिए थके होंगे कि वहां पर जहन्नुम में ऐसे आजाब है एक के बाद एक आजाब, के वो कर कर के मेहनत थक जाएंगे। कहीं सऊद, सौद के साथ जो है वो पहाड़ है, उसके ऊपर चढ़ना है, उनको बार बार कहा जाएगा चढ़ो। कहीं यतूफून बैनहा व बैन हमीम आन, जहन्नुम के दरमियान उनको तवाफ कराया जाएगा कि कभी जहन्नुम कभी खौलता पानी, कभी जहन्नुम कभी खौलता पानी, उसके दरमियान ही भागते जाएंगे। कहीं चढ़ रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, एक से दूसरी तरफ, दूसरी से तीसरी तरफ। फिर आप देखेंगे वहां पर लड़ाई झगड़े, लानते बहसें, वो भी तो इंसान को थका देती है। फिर कहीं दुआएं मांग मांग के थक रहे होंगे कि ऐ मालिक अपने रब से कि हमें यहाँ से निकाल दे। इतने थक जाएंगे, इतने एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिर जंजीरें पहनी हुई है, तौक पहने हुए, जिनको ड्रैग करते हुए चल रहे हैं, तो इस कदर उनकी थकावट होगी। और दूसरी बात, दूसरा माना यह है कि दुनिया में वो अमल करते रहे, वो अमल कर करके थकते रहे, जिनका यहाँ पर कोई हासिल नहीं है, जिनकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो जो यहाँ पे किसी काम के नहीं है। और वो कौन कौन से अमल हैं, अब उनको देख लेते हैं। नंबर 1 ये कि यहाँ तो वो उस दीन पे थे जो यहाँ पे चलता ही नहीं। मसलन ईसाइयत में रहबानियत है, अब रहबानियत इख्तियार की भी कितनी मुशक्कत काटते हैं ना ये लोग, कि वही अलग होके रह रहे हैं ना, शादी करते हैं ना, कोई अच्छा कपड़ा पहनते हैं, बस इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, हर वक्त इबादत कर रहे हैं, अपने चर्चेस में रहते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, सारी जिंदगी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसको हासिल किया जीरो। इसलिए क्योंकि वो अकीदा जो अल्लाह ताला के हाँ काबिले कबूल है, वो उस अकीदे को नहीं लेकर आए, शिर्क करते हुए मर गए। इसी तरह आप हिंदुओं को देख लें, आप उनके ये जो उनके होते हैं यानी जो उनके बड़े जिन जो उनके लीडर होते हैं या जो मंदिरों को देखने वाले होते हैं, मजावर होते हैं, उनके कितनी मेहनत करते हैं, बस वो डेडिकेट की होती है उन्होंने अपनी जिंदगी, वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, बस उनकी जिंदगी वही होती है, सारा वक्त वो उसी को अपनी जो जो बुत होते हैं उन्हीं को साफ सुथरा करते रहते, उन्हीं के आगे बैठे रहते। क्या उनकी ये मेहनतें काम आएंगी? वो थक गए हैं दुनिया में अमल कर कर के, लेकिन कोई नतीजा नहीं। वो समझते हैं वहां जाके उनको बहुत अच्छा मिलेगा, तभी तो वो कहते हैं रेस्ट इन पीस, उनको लगता है कि बस अब पीस आ गया, अब रेस्ट इन पीस, लेकिन वहां पे इन मेहनतों का कोई फायदा नहीं। इतनी उन्होंने मेहनत की, फिर नंबर 2 कौन सी ऐसी चीज है कि जो वहां पे नहीं काम आएगा? बिदतें जो करते हैं, अब वो बिदात कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनका दीन बिदतों पे मबनी है, तो उस दिन रिजेक्टेड होंगे। अब मेहनतें उन्होंने इतनी की यहाँ पे, लेकिन कोई मेहनत काम ना आई, कुछ भी नहीं मिला उनको। ये वो सोचते थे कि ये नेकी के काम है, ये हमें पार लगवा देंगे, वो सारी जिंदगी करते रहे और बिदतों के साथ आ गए। जितने भी ये कर रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं, अपनी मेहनत भी लगा रहे हैं, अपनी जिंदगी इन्होंने इसके पीछे कुर्बान की भी है, लेकिन वहां पर ये कुछ नहीं चलेगा। इसी तरह तीसरी चीज वो जिसका सूरह कहफ में भी जिक्र आता है कि सबसे ज्यादा खसारे में कौन है, जिसकी सारी जिंदगी की मेहनत इसी दुनिया के लिए लग गई और वो समझता रहा कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो यानी दुनिया में इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की दुनिया कमाने के लिए, दुनिया को बढ़ाने के लिए, दुनिया के मजों के लिए, दुनिया में भागते रहे, थकते रहे, थकते रहे, बहुत मेहनत से कारोबार खड़ा किया, बहुत बहुत जॉबें की, बहुत बनाया, थक गए, लेकिन आखिरत के लिए कुछ भी ना किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, हलाक हो गया अब्दुल दिरहम, हलाक हो गया अब्दुल दीनार, दिरहम और दीनार तो कमाते रहे, इनके ही गुलाम बन गए, पर आखरत के लिए कुछ भी ना किया। तो इन लोगों की भी जो अपनी दुनिया को ही संवारने में लगे रहे, ये तो नहीं चाहिए थे सिक्के वहां पे, ये करंसी तो वहां चलती नहीं। आप मसलन एक मुल्क की करंसी दूसरी पे ले जाए, वहां पे दुकान पे दे, वो कहते नहीं ये नहीं यहाँ पे चलती है, हमें तो ये यहाँ पे चाहिए नहीं, हमें तो यहाँ की करंसी चाहिए। इसी तरह इस दुनिया में जिसने जो कमाइयां कर ली, वो यहां की करेंसी है, वो वहां नहीं चलनी। तो बहुत मेहनत करके थके होंगे पर हासिल कुछ नहीं होगा, वो सब कुछ दुनिया में ही रह गया। 12 12 घंटे, 14 14 घंटे जॉबें की, बड़ा कुछ बना लिया था पर वो कहाँ चला गया? अल्लाह हू अकबर। तो हजरत उमर एक दफा एक राहिब को देखा था तो रोने लगे और फरमाया, आमिलतुन नासिबा, अमल कर करके थकने वाले, इसने अपनी जवानी भी लगा दी, अपनी मेहनत भी लगा दी, मुशक्कत भी लगा दी, क्या हासिल किया? दिन रात एक कर दी है, क्या हासिल हुआ? तो कोई भी ऐसा अमल जो आखरत में काम नहीं आ सकता, फिर वो इंसान जितनी भी मेहनत कर ले यहाँ पर, वहाँ पे आ मिला तो नासिबा होगा, क्योंकि थके हुए हैं लेकिन उनकी थकावटें आखरत के लिए थोड़ी थी, दुनिया के लिए ही थी। लिहाजा इंसान हमेशा अपने आप से कोई भी काम करते हुए दो सवाल कर लिया करे, नंबर 1 किस लिए कर रहे हो, किस घर के लिए, दुनिया के या आखरत के, नंबर 2 किस तरीके से कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक या आपकी सुन्नत है ही नहीं और मैं खुद ही कर रही हूं। तो कितनी तरह के लोग होंगे जो उस दिन थके पड़े होंगे। थकने के बाद इंसान कहता है ना, अब तो तंग आके ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। यहाँ पे तो इंसान थकता है तो सोचता है बस अब मर जाएंगे तो फिर ही चैन आएगा, और मर के भी वहां पे आमिलातुन नासिबा के उनके चेहरे बता रहे होंगे। आमिला ये वजूद का ही एक सिफत है कि वो ऐसे चेहरे होंगे जो थके मांदे होंगे। और दूसरा आना आमिला का कि हरकत कर रहे होंगे, तो ये थकन से इतने चूर होंगे कि खड़े नहीं रह सकेंगे, बस गिर पड़ेंगे। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला इससे महफूज रखे कि इंसान की मेहनतें और कोशिशें इस दुनिया में ही गर्क हो जाएं। दुनिया में तो इंसान दौलत के ढेर लगा लेता है, दुनिया में तो इंसान ही अपनी एक धुन सवार होती है कि मैंने बस ये करना है, ये मेरा एम है, ये मेरा गोल है, ये चीज हासिल कर लूं, यहां तक पहुंच जाऊं, वो चीज ही या वो मकाम ही उसके जहन पे सवार रहता है। मगर इस सारी मेहनत का अंजाम कुछ भी हासिल ना हुआ तो क्या है? आप शद्दाद को याद करें जिसने अपनी जन्नत बनाई थी, और जन्नत बड़ी मेहनत से बनाई, बड़ी मेहनत से बनाई, और फिर जब उस जन्नत को देखने के लिए गया, अब वो पूरी बन चुकी है, और अपने घोड़े से नीचे उतरने लगा, नकाब में पैर फंसा और वहीं पे मौत आ गई। आमिलातुन नासिबा, थक जाती हैं अमल कर करके, मेहनत कर करके। अल्लाह अकबर। तस्ला नारन हामिया, दाखिल होंगे आग में, हामिया भड़कती हुई, ऐसी आग जो बहुत गर्म है, ऐसी जो भड़क रही है, जो तेज है, इसमें बहुत ज्यादा हरारत है। हामिया बर्निंग को कहते हैं, तो इसीलिए भड़कती भी कमाना है। और दूसरा बाज रखने को, यानी बाज रखेगी इस चीज से कि स्किन जल के खत्म हो जाए, बार बार स्किन आएगी, बार बार जलेगा, बार बार स्किन आएगी। क्योंकि जैसे दुनिया की आग में तो इंसान अगर पड़ जाए तो बच नहीं सकता, उसको मौत आ जाती, लेकिन वहां पे सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, मौत है नहीं। तो इसमें कौन जाएंगे? वो काफिर भी जो अल्लाह को नहीं मानते थे, मुशरिक भी, मुनाफिक भी, वो तो कभी भी नहीं निकलेंगे, और वो मुसलमान भी जो जरायम करते रहे वो भी दाखिल होंगे और अपने जरायम की सजा भुगतेंगे। मगर सोचें, एक लम्हे के लिए भी इस दुनिया की आग को भी चखना मुश्किल है। एक लम्हे के लिए भी किसी को कह दिया जाए इस आग में दाखिल हो जाओ, यहाँ पे तो जिल्द जल जाए तो उस पे असर खत्म हो जाता है, इंसान वैसे ही मर जाता है फिर, लेकिन वहां पर मौत नहीं, और इससे 70 गुना ज्यादा है। और ये इस आग को दुनिया में जो हम देखते हैं, ये ऐसी है कि जो कई दफा धो के फिर दुनिया में भेजी गई। वो आग तो ऐसी है कि उसका एक हिस्सा दूसरे को खा रहा है, वो अल्लाह ताला से शिकायत करती है कि मेरा एक हिस्सा दूसरे को खा रहा है, इतनी सख्त गर्म है। दुनिया के वॉल्केनों को फटते हुए देखें आप, जब उनका लावा आ रहा होता है, देख के खौफ आता है इतना ज्यादा, अल्लाह अकबर, कि इसकी एक चिंगारी भी उठ के हमारे ऊपर पड़ जाए तो क्या हाल हो। कभी आपने लावे की तस्वीर देखी है? और सोचें कि आग जहन्नुम की जो है ना, उसका तो तस्वर हो ही नहीं सकता, ना जन्नत की नेमतों का हो सकता है, ना जहन्नुम के अजाबों का हो सकता, आप तस्वर नहीं कर सकते कि वो कैसी होगी। अल्लाह अकबर। तुस्का मिन आइनिन आनिया, ये वो है जिसमें पिलाए जाएंगे एक चश्मे से जो खौलता हुआ होगा, इतना खौलता पानी उस चश्मे को होगा, बॉइलिंग वाटर। अब वाटर तो 100 डिग्रीज पे इवेपोरेट हो जाता है, ये कौन सा पानी है जो कि खौलता रहता है वहां पर और खत्म नहीं होता, भाप बन के उड़ नहीं जाता। इसका मतलब है कि वो ये H2O नहीं है, वो कोई पत्थरों को पिघलाया गया या क्या है वो, जिसको लिक्विड फॉर्म में उनको दिया जाएगा, फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा इसको पकड़ लो और जहन्नुम के बीच में ले जाओ और इसके सर पे खौलता हुआ पानी दो। और जब खौलता हुआ पानी सर पे डाला जाएगा तो उसके सर में छेद हो जाएगा और जिस्म के अंदर के तमाम आज़ा को जला देगा। फिर ये आज़ा उसकी पीठ के रास्ते निकलकर उसके कदमों में जा गिरेंगे। और युस्कौना तुस्का, पिलाए जाएंगे, तुस्का यानी ये चेहरे पिलाए जाएंगे, ता है ना शुरू में, ये चेहरे पिलाए जाएंगे ऐसे चश्मे से जो आनिया है, आनिया आनिया खोलते हुए पानी के लिए आता है, आइन चश्मे को कहते हैं। आन जब कोई लिक्विड इतना गर्म हो जाए कि उबलने लग जाए, चश्मा ऐसा बहता हुआ देख के, वैसे तो इंसान कोई ऐसी चीजें देखे तो इंसान नहीं पीना चाहता या नहीं उसके पास भी जाना चाहता, लेकिन क्या बात होगी कि उनको पीना पड़ेगा। और फिर वो उनके अंदर जिस्म की सब चीजों को गला देगा। सो कहा जाएगा जुक इनका अंतल अजीजुल करीम, चख अब ये, तू बहुत बड़ा बनता था ना, इज्जत वाला बनता था ना, फिर वहां पे प्यास भी है और भूख भी है। देखिए जब गर्मी होती है ना तो इंसान को सबसे ज्यादा ये होता है कि मुझे प्यास लगी है, पीने को कुछ मिल जाए तो पीने को तो ये मिलेगा कि जो खौलता हुआ पानी है, और खाने को क्या मिलेगा, लैस लहुम ताम इल्ला मिन दरिया, नहीं उनके लिए कोई खाना सिवाय दरिया के। दरिया एक ऐसे कांटेदार झाड़ी को कहते हैं जो अरब में होती थी और उसके पास कोई इंसान तो क्या जानवर भी उसको खाने को नहीं जाता था, इसलिए कि उसके ऊपर इतने कांटे होते थे कि जो भी चीज उसके करीब जाए वो उसको लहूलुहान कर दे। ऊंट खा सकता था ये सिर्फ, क्योंकि उसके होर्न डिफरेंट होते, बाकी कोई नहीं खा सकता। तो ये कोई कांटेदार झाड़ी है जो कि जहन्नुम के अंदर होगी। और देखिए दूसरी जगह हम जो दो और खाने जहन्नमियों के पढ़ते हैं वो क्या है, जकूम और गिसलीन। जकूम भी एक ऐसा दरख्त है उसके अंदर जिससे जहन्नुम में जो इनको खिलाया जाएगा जहन्नमियों को, और गिसलीन तो आपको पता है ना पस है जो जहन्नमियों के जख्मों से निकलेगी। अब इंसान दुनिया में इस तरह की कोई चीज देख लेना तो वो कहता है मेरी भूख ही मर गई है, मैंने खाना ही नहीं है, मगर सोचे वो क्या भूख होगी कि वो फिर भी खाएंगे और ऐसी चीजें खाएंगे। और इसका मतलब भूख और प्यास का भी अजाब कितना सख्त होगा कि उनको खाने पे मजबूर कर देगा उनको। वरना आप नॉर्मल इंसान को देखें कि इंसान कभी भी ना खाए, कौन खाएगा, कोई भी इंसान नहीं सोच सकता कि वो ऐसी कोई चीज खा सके, लेकिन वहां पे वो हैं और भूख का प्यास भी बर्दाश्त, भूख और प्यास को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। ला तो बकी वाला तदर, ना जान निकलेगी ना जान छोड़ेगी। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और ये जो जिस आग के अंदर ये दरी और जिसमें ये पानी है, वो आग मुसलसल भड़काई जा रही है, मुसलसल और कयामत तक भड़काई जाती रहेगी, और ये सिलसिला जहन्नमियों के जहन्नम में चले जाने के बाद भी जारी रहेगा। सोचें कि वो आग की शिद्दत क्या होगी, दुनिया की आग का कम से कम दर्जा हरारत जो है ना, अगर शुमार किया जाए तो 2000 डिग्री तो है ही है, इतना तो है ही अंदाजा, इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो जहन्नुम का अगर 70 टाइम्स इसको कर लिया जाए तो 1 लाख और उससे भी ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब इसके अंदर ये वैसे ही, अब चूल्हे पे ही पानी रख दें तो कैसे उबल रहा होता है, और आप ऑयल रखते हैं, ऑयल भी तो एक ऑयल को उबलते हुए देखें तो और भी ज्यादा खौफ आता है। और वॉल्केनो को देखें तो और भी ज्यादा, कि उसका लावा कैसा होता है, और ये दुनिया की हर आग से ज्यादा ये आग है। तो ऐसी बदतरीन जगह पर इंसान की जिंदगी कैसी होगी? एक तिलचट आग की भी, वो तेल की भी गिर जाए और इंसान के हाथ पे आबला पड़ जाए ना, तो बर्दाश्त नहीं होता, दुखता रहता है वो। बंदा कितनी चीजें उसके ऊपर लगाता है, जरा सा हाथ जल जाए तो कितने स्प्रे और कितनी चीजें, और किस तरह से इंसान बेचैन हो जाता है। लेकिन आखिरत का क्या है फिर? इसीलिए कयामत के दिन हर कोई इसको देख के भी खौफजदा होगा, इतना खौफजदा होगा जहन्नुम को देख के कि अंबिया तक कहेंगे रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम, ऐ रब मुझे बचा ले, ऐ रब मुझे बचा ले। आयशा रज़ील्लाह ताला इसी आग को याद करके रोती थी, ओढ़नी उनकी भीग जाती थी। एक दफा हज़रत उमर ने कुरान करीम में तिलावत के दौरान आग के अजाब की आयात पढ़ी तो बेहोश हो गए, बेहोश हो गए इतनी ये इसकी सख्ती का सोच के। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, इन्ना अज़ाब रब्बी का काना महज़ूरा, तेरे रब का अजाब है ही ऐसी चीज जो डरने के लायक है, इसीलिए वो डरते थे। अब्दुल्ला बिन मसूद लोहार की दुकान से गुजरे, आग से दहकती भट्टी देखी तो जहन्नम की आग को याद करके रोने लगे। प्यास भी है, भूख भी है, आग भी है, कैसे इंसान इसको बर्दाश्त कर सकता है? थोहर का दरख्त कांटेदार घास खाने के लिए, और थोहर बाज उलमा कहते हैं यानी जो दरही यहाँ पे कहा गया, दरही जो कांटेदार झाड़ी या घास है, वो दोनों चीजों के लिए, गसलीन के लिए भी और जकूम के लिए भी। थोहर का जो दरख्त जकूम है उसके लिए भी और गसलीन दोनों को शामिल है ये दरही जो है। तो जो पीना है, जब जहन्नमी उसको पीने की कोशिश करेगा तो सिर्फ प्याले को, जिस प्याले में वो पानी होगा, सिर्फ उसको मुंह के करीब लेकर आएगा तो उसकी भाप ऐसी होगी कि मुंह की सारा सारी स्किन जो है, जो गोश्त पोश है, जल के नीचे गिर पड़ेगा, फिर भी वो उसको पी लेगा। तो जो हिस्सा पेट में जाएगा फिर वो सारी आंतें काटेगा। तो पीना और खाना भी अजाब है वहां पे। तो खाने के बारे में तो ये कहा गया कि ला युस्मिनु, ना मोटा करेगा, सीन मीम नून से, वला युगनी, और ना काम आएगी, मिन जुआ, भूख से, ये खाना ना तो इंसान को नरिशमेंट देगा कि कोई इंसान को ताकत आ जाए, कोई हिम्मत आ जाए, कोई इंसान को एनर्जी मिल जाए, वो भी नहीं होगी, और भूख भी नहीं मिटाएगा, क्योंकि जो भूख के अजाब की वजह से वो उसको खा रहे थे, भूख मिटेगी नहीं, इस वजह से और खाते ही जाएंगे, खाते ही जाएंगे कि कहीं तो भूख मिट जाए। अस्तगफिरुल्लाह ही रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह ही रब्बी। नहीं, ये समझ आता है कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी सारी फिक्रों से बड़ी फिक्र ये होनी चाहिए कि कैसे इस खाने से बच जाओ। सारी मेहनतों से ऊपर मेहनत इस चीज की होनी चाहिए, क्या ऐसे पीने से बच सको? सारी सोचों के ऊपर ये सोच गालिब होनी चाहिए कि जहन्नुम का एक लम्हा भी मैं ना जहन्नुम में गुजारूं। सारी मसरूफियत में सबसे टॉप पे ये मसरूफियत होनी चाहिए, क्या चीज, कौन सा काम मुझे जहन्नुम से दूर करते। हर प्लानिंग के ऊपर ये प्लानिंग होनी चाहिए। ये भी गाशिया है ना, ये भी ढांप लेगी, मैं थकूं तो इसलिए थकूं कि इससे अपने आप को दूर कर लूं, मेरी मेहनतें हों तो इसलिए हों कि ये मेरा कहीं एक जर्रे का भी, एक लम्हे का भी मेरा वक्त जहन्नुम में ना गुजरे, इसके लिए मेरी मेहनत तो नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दी गई है खाने की और पीने की, इंसान इनको सोचे ही कैसे चश्मे होंगे, कैसे उबल रहे होंगे, कैसे जहन्नुम के दारों में लेकर चलेंगे, कैद में होंगे, किस तरह बेड़ियां होंगी, किस तरह की वहां की खाने होंगे, किस तरह के वहां के तौक होंगे। जाहिर है वो खाने कम से कम उतने गर्म तो जरूर होंगे जितनी गर्म जहन्नुम की आग होगी, तो समझ ले दूसरे लफ्जों में जहन्नुम के अंगारे ही हैं जो वो खा रहे होंगे। भूख मिटाने के लिए ना निगले तो ना उगले चैन, लेकिन निगलेंगे कि कहीं भूख ही मिट जाए, चलो इस अजाब से ही बच जाएं, लेकिन वो इससे भी नहीं बचेंगे। अल्लाह अकबर। आज हम इन सब बातों को भूल गए, आज हमने इनके लिए, इन चीजों के लिए मेहनत करने को अपना एम नहीं बनाया कि मैं इन चीजों से बच जाऊं। हम जिंदगी किसी और फिक्रों में गुजार रहे हैं और उन्हीं के पीछे मेहनत कर रहे हैं। वो चीजें ना भी मिली और इस दुनिया में कुछ भी ना मिला और आखरत संवर गई तो भी फायदे में है, और इस दुनिया में सब कुछ मिल गया, सोचें जो आपकी ख्वाहिश है, हर ख्वाहिश आपकी पूरी कर दी जाए अगर, लेकिन आखरत में अगर आ मिला तो नासिबा हो गए, ये मेहनतें कर करके थके हुए हैं, दुनिया में सब पा लिया था लेकिन वहां पे अगर जहन्नुम में चले गए तो सब गारत हो गया। और सोचे कि ऐसी जगह पर जो लोग कहते हैं कुछ अरसा जहन्नुम में गुजार के जन्नत में चले जाएंगे, ऐसी जगह पर एक लम्हा भी गुजार सकते हैं क्या? अगर गुजार सकते हैं तो कम से कम इस दुनिया की आग के ऊपर अपना हाथ रख के देख लें, ऐसे हजरत उमर किया करते थे, कहते थे ए नफ्स क्या तू इसको बर्दाश्त कर सकता है, इसको बर्दाश्त कर सकता है, अगर नहीं कर सकता तो आखिरत में जहन्नुम को कैसे बर्दाश्त करेगा, तो बाज आ जा। हम दुनिया में इतनी सी भी दुनिया की मुसीबत भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो अवेला करते हैं, तो आखिरत के ये अजाब कैसे बर्दाश्त हो सकते हैं? फिर ये ना सोचे सिर्फ कि ये तो वो काफिरों के लिए बस हो ही जाएंगे और मुसलमान तो जो मर्जी करता रहे उसके लिए तो जन्नत ही है। नहीं, मैंने आपको बताया आमिलातुन नासिबा में वो भी हैं जो बस दुनिया के लिए सख्त मेहनत कर करके थकते रहे हैं, उनसे सारे काम बस यहीं के लिए थे, आखरत के लिए उन्होंने कुछ जोड़ा ही नहीं, कुछ नहीं जमा किया। एक औरत इतनी अक्लमंद है कि वो कहती है मेरी बेटी है तो इसके लिए जोड़ लूं कि कल को इसकी शादी करनी। एक आदमी इतना अक्लमंद होता है वो कहता है जोड़ जोड़ के रखो, क्या पता कल को मेरी नौकरी चली जाए तो फिर ये सेविंग्स काम आएंगी। दुनिया के मामले में कितने अक्लमंद हैं, और हम सब दौड़ रहे हैं इन्ना का कादिहुन इला रब्बी का कदहन फमुलाकी, हम सब दौड़ रहे हैं, मेहनतें कर करते हुए दौड़ते जा रहे हैं, मेहनत हो रही है और दौड़ लगी हुई है, अल्लाह ताला से मुलाकात का दिन करीब आ रहा है लेकिन होश फिर भी नहीं है। कैसे हमारे होश गुम हो गए, किधर हम गुम हैं, हमारी एनर्जी किधर लग रही है, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, ये प्रायोरिटी भी है कि नहीं बनी अभी, कि इससे बचना ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जैसे राबिया बसरी को जब उनके लिए रिश्ते का पैगाम भेजा गया तो कहने लगी तीन बातों का जवाब दे दो तो शादी कर लूंगी, क्या बात यह कि मेरे जब आमालनामे तकसीम होंगे, मेरे दाएं हाथ में आएगा कि बाएं? तो उन्होंने कहा भी मुझे तो नहीं पता किस हाथ में आएगा। अच्छा, जब आमाल तुलेंगे तो मेरी नेकियां भारी होंगी या हल्की हो जाएंगी? मुझे तो नहीं पता। फरमाती हैं कि पुल सिरात से गुजरेंगे तो मैं पार होंगी कि मैं पार नहीं हो सकूंगी? कहा मुझे तो नहीं पता। फरमाती हैं फिर जाओ, मुझे फुर्सत नहीं, मुझे इसकी तैयारी करनी है। मुझे और आपको पता है, आप बताएं पशु से कह सकते हैं राइट या लेफ्ट हैंड में किस में मेरा अमालनामा मुझे मिलेगा? आप बता सकते हैं आपकी नेकियां उस दिन भारी होंगी या गुना भारी होंगे? आप बता सकते हैं पुल से रात से गुजर पाएंगे या नहीं? हर एक को छोड़ दे, मैं और आप अपने आप को सोचें, एक लम्हे के लिए तो सोचें, बार हो सकेंगे या नहीं? अगर नहीं या पता ही नहीं है तो कितनी ज्यादा तैयारी की जरूरत है। अगर पता ही नहीं है कि मेरे राइट हैंड में आएगा कि लेफ्ट में, अगर पता ही नहीं है मेरी नेकियां बढ़ी हैं कि नहीं, तो फिर कितना जरूरी है कि हम रिस्क में हैं? हम कितने रिस्क में हैं और हम उसको रिस्क को लेकर बड़े मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं और इधर उधर चक्रों में पड़े हुए हैं, ये काम कर लूं, वो काम कर लूं, ये अपने शौक पूरे कर लूं, उधर मजा कर लूं, इधर पार्टी टाइम कर लूं, ये खा लूं, वो पी लूं। अगर मुझे इस परेशानी ने नहीं आ लिया कि मेरा अंजाम क्या है, और अभी तक मुझे ये फिक्रें नहीं खा रही कि मैं किधर एंड अप होंगी, तो कुछ भी नहीं सीखा, कुछ नहीं समझा। हर वक्त अगर दुनियावी फिक्रें ही मेरे दिलो दिमाग पे हावी हैं और मैं इन्हीं में पड़ी हुई हूं, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हासिल हो जाए, वो हासिल हो जाए, तो मैंने अभी आपको हदीस सुनाई कि जिसके दिमाग पे यही फिक्रें सवार होती ना, अल्लाह ताला उसको छोड़ ही देता, जाओ तू, उसकी मदद नहीं फरमाता, अल्लाह ताला भी उसको इसकी परेशानियों के हवाले ही कर देता। अल्लाह अकबर। अमर बिन आस की वफात का वक्त करीब था तो लोग उनके पास इर्द गिर्द जमा थे, तो वो देर तक रोते रहे और अपने चेहरे को दीवार की तरफ फेर लिया। उनका बेटा उनको तसल्ली देने लगा, कहने लगा, ए मेरे अब्बा जान, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खुशखबरी नहीं दी थी? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खुशखबरी नहीं दी थी? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खुशखबरी नहीं दी थी? फिर उन्होंने अपना चेहरा मोड़ा और फरमाया, सबसे फजीलत वाला अमल जो हम तैयार करते हैं वो तो इस बात की गवाही देना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मैं इन तीन हालतों में रहा हूं। मैंने अपने आप को उस हालत में भी देखा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुझे शदीद बोझ था और मुझे सबसे ज्यादा ये महबूब बात लगती थी कि मैं आपको शहीद कर दूं। अगर मैं इस हालत में मर जाता तो मैं दोस्त ही होता। फिर अल्लाह ताला ने मुझे इस्लाम दे दिया और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हूँ और किया अपना दायां हाथ फैलाए, मैं आपकी बैत करना चाहता हूँ। आपने दायां हाथ फैलाया तो मैंने अपना हाथ खींच लिया। आपने फरमाया, ए अमर तुझे क्या हुआ? मैंने अर्ज किया, एक शर्त करना चाहता हूँ। आपने फरमाया, क्या शर्त करनी है? मैंने अर्ज किया, मेरे पिछले गुनाह बख्श दिए जाएं। आपने फरमाया, क्या तुम नहीं जानती इस्लाम के जरिए सारे पिछले गुनाह माफ हो जाते? उसके बाद मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई महबूब नहीं था। मैं आपको कभी नजर भर के भी नहीं देख पाता था, मेरी नजरों में आपका जलाल इतना था। अगर मुझे कहा जाए मैं आपका हुलिया बयान करूं तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कभी नजर भर के देखता ही नहीं था आपकी तरफ। अगर मैं उस हालत में मर जाता तो मुझे उम्मीद होती कि मैं अहले जन्नत में से हूं। फिर हम बहुत सी चीजों के जिम्मेदार बना दिए गए और मैं नहीं जानता कि अब मेरा क्या हाल। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारियां आ गई, बस जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे के साथ नोहा ना करना, जब मैं मर जाऊं तुम मुझे दफन कर चुको तो अच्छी तरह मिट्टी डाल के मेरी कब्र पर इतनी देर खड़े रहना जितनी देर ऊंट ज़िबा करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता। अल्लाह अकबर, उनको कितनी फिक्रें थी ये सहाबी रसूल। और कहते हैं कि और मैं देख लूं कि मेरे रब के भेजे हुए फरिश्तों को क्या मैं क्या जवाब दे सकूं, जब तक तुम खड़े हो के मेरे लिए दुआएं करते रहना। उनको अपनी नेकियां बड़ी नहीं लगती थी, वो फिक्र करने वाले थे, वो हर वक्त आखरत की याद में रहते थे। अल्लाह अकबर। और आज हमने किन फिक्रों को अपनी सबसे बड़ी फिक्र बना के रखा हुआ। हज़रत इब्राहिम बिन यजीद तमीमी बहुत बड़े ताबई हैं। एक दफ़ा अपने दौलतमंद बाप को इस बात पर टोका कि आप मामूली कपड़े क्यों पहनते हैं। बाप ने जवाब दिया, जब से मैं बसरे में आया हूं मैंने हजारों दीनार के कपड़े पहने हैं, मगर मेरी खुशी में कोई इजाफा नहीं हुआ। इसलिए लिबास मेरे लिए कोई खुशी का सामान नहीं है, मैं तो आखरत के हिसाब किताब से डरता हूं, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू दरदा से सुना है कयामत के दिन एक दिरहम रखने वाले से ज्यादा 2 दिरहम रखने वाले का हिसाब लिया जाएगा। यानी आप मुझे कपड़ों की कोई खुशी नहीं है, इसलिए कि कयामत के दिन जिसके पास जितना ज्यादा होगा उसका हिसाब उतना ज्यादा होगा, 2 दिरहम वाले का हिसाब 1 दिरहम वाले से ज्यादा होगा। अबू बकर सिद्दीक इसीलिए दरख्त को देखते थे तो फरमाते थे काश मैं एक दरख्त होता, ये मेरे से हिसाब ना लिया जाता। परिंदों को चहचहाते देखते तो सर दाह पड़ते, परिंदों कितने मजे में हो, दरख्तों पे बैठते और तुम्हारा कयामत में कोई हिसाब नहीं, काश अबू बकर तुम्हारी तरह होता। अल्लाहु अकबर। हम कहते तो है जिंदगी इम्तिहान है, लेकिन इम्तिहान के तैयारी के वक्त किसी जहीन तालिबे इल्म को देखें जो पास होने के लिए मेहनत कर रहा होता है, जो टॉप करने के लिए मेहनत कर रहा होता है, उसको देखा जरा करें कि तैयारी के दिनों में वो कैसे हो जाता है। सो किसी चीज का होश नहीं होता, गैर जरूरी काम छोड़ देता है वो, सिर्फ जरूरी काम करता है, और अक्सर तो रातों की नींद भी उसकी कम हो जाती है, खाना पीना भी कम हो जाता है, कहीं तैयारी में हरज ना हो जाए। ये उन तालिबे इल्मों का हाल है जो इस दुनिया के इम्तिहान में बैठने वाले हैं, जिनमें अगर फेल भी हो जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है, दोबारा मौका मिल जाता है। और उनका क्या हाल है जो उस इम्तिहान में इस वक्त हैं, जिसमें अगर फेल हो गए तो दोबारा कभी कोई चांस नहीं है। वो जो हुई योमा इदिन आईमा, कुछ चेहरे उस दिन नेमतों वाले होंगे, वो चेहरे इतने हशाश बशाश होंगे, इतने आसूदा होंगे। न आईमा, वो चेहरा जो तरोताजा है, जो राहत में है, जो सरूर में है, जिसपे कोई स्ट्रेस नहीं है, नेमतों का असर उस चेहरे पे नुमाया है। ये भी चेहरे हैं जो चमक रहे हैं, दमक रहे हैं उस दिन। लिसाइहा रौदिया, अपनी कोशिशों पे राजी होंगे, मेहनतें इन्होंने भी की हैं, लेकिन कुछ हैं जो मेहनतें कर करके आए और अभी तक आमिलतुन नासिबा, जो मेहनत है, जो मुशक्कत है, वो उनके चेहरे के ऊपर नजर आ रही है और वो थके पड़े हैं, लेकिन कुछ चेहरे हैं जो अपनी मेहनत से राजी हैं, इन्होंने मेहनत की लेकिन आज इनके चेहरे थके हुए नहीं है। मेहनत ये दुनिया में करते थे, आज इनके चेहरे हशाश बशाश, आज इनके चेहरे रौनक वाले, क्योंकि इन्होंने मेहनत सही डायरेक्शन में की। इनकी जो मेहनतें थी, इनकी जो कोशिशें थी, आज वो रंग लाई हैं। इस वजह से ये रौ दिया, अपनी कोशिशों पे राजी है, एक तो मतलब ये, और दूसरा मतलब ये अपना अजर देख के, वो जो इतना बड़ा इनको रिवॉर्ड मिल रहा है, इनको नजर आ रहा है कि मेरी कोशिश तो इतनी भी नहीं थी जितना मुझे रिवॉर्ड बड़ा मिल रहा है, वो इतने खुश हैं, इतने राजी हैं, क्योंकि इनकी मेहनतें आज रंग ले आई। अब ये वही कर रहे होंगे कि काश दुनिया में जिंदगी का सारा ही वक्त इसी घर के लिए लगा दिया होता, कुछ भी जरा भी इधर उधर ना जाया किया होता, जो चीजें जरूरी लग रही हैं आज वो कस कल किसी काम की नहीं, कल वो कितनी बेमानी लगेगी। और वो जो मेहनतें, जो मुशक्कतें, जो मुश्किल लग रही हैं आज, जो करने में इंसान को तकलीफ उठानी पड़ती है, जो करके इंसान थक रहा है, लेकिन वो आखरत के लिए है और सही डायरेक्शन में है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है, कयामत के दिन उसी मेहनत के ऊपर वो खुश हो रहा होगा। उसको अब वो थकावट नहीं याद आएगी कि मैं कितना थका था, मैंने कितनी मेहनत की, बस वो खुश है अब, क्योंकि उससे देख रहा है कि कितना बड़ा रिवॉर्ड मिला है मुझे। मेरी तो कुर्बानी कुछ भी नहीं थी, मेरा तो सबर कुछ भी नहीं था, मेरी तो किसी की बातों पे अजियत उठाना तो कुछ भी नहीं था, मेरा किसी को माफ कर देना तो कुछ भी नहीं था, मेरा नमाज के लिए उठना तो कुछ भी नहीं था। देखो इसके ऊपर मुझे कितना बड़ा अजर मिल रहा है, क्योंकि लेकिन दुनिया में ना आखरत के लिए जो किए जाने वाला अमल है ना, उसके लिए खुद को बड़ा मनाना पड़ता है, मन मानता नहीं है, नफ्स ही नहीं मानता, खुद से फाइट करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, कहीं सुस्ती आती है, कहीं दिल नहीं मानता, कहीं दिल नहीं लगता, कहीं दुनिया खींच रही होती है, कहीं कोई लोग बातें बना रहे होते हैं, कहीं किसी के ताने सुनने पड़ते हैं, कहीं मजाक हो रहा होता है, कहीं दिल खुद ही चाह ही नहीं रहा होता, लेकिन फिर भी इंसान जब कर लेता है ना, तो यहाँ पे आज ये मुश्किल है, कल इसी के ऊपर खुश हो रहा होगा। यहाँ पे कभी थकन भी हो जाती है, यानी कल ये थकन याद भी नहीं रहनी जब वो अजर नजर आएगा। तो अपनी मेहनत से खुश हो रहे होंगे, अब उनको उनकी मेहनत रंग लाती हुई नजर आई है, अब वो इस पे खुश होंगे कि अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दे दी, उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे, अल्लाह तूने मौका दे दिया। अभी तो मौकों से भागते हैं ना, अभी तो इंसान कहता मैं ही रह गई हूं, किसी और को कह दे, कोई और कर ले, बचते फिरते हैं कहीं मेरे ऊपर ना नजर पड़ जाए, आ मुझे कहीं ना काम के लिए कह दिया जाए, हो ही जाएगा काम, कोई मेरे करने से ही तो नहीं होना, बहुत सारे लोग करने वाले हैं। लेकिन देखें उस दिन इंसान शुक्र करेगा कि मुझे मौका मिल गया, अल्लाह तूने मुझे तौफीक दे दी, वो इस तौफीक के मिलने पे बहुत राजी होगा। जन्नत इन आलिया, जन्नत में होगा आला मकाम, आलिया आली आला, हाय जन्नत में, वो मकाम में भी हाय है, यानी उनका मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है, और वो अपनी जगह के लिहाज से भी हाय है, ऊपर है। जन्नत हमेशा याद रखे दरजात में ऊपर को, और जहन्नम दर के नीचे से नीचे, नीचे से नीचे। आप देखिए हमेशा इंसान ना ऊपर वाली जगह को पसंद करता है, इस वजह से कि वहां से व्यू बहुत अच्छा आता है, किसी का घर टॉप ऑफ द माउंटेन पे हो तो बड़ा अच्छा देखा जाता है, कितना मजा आता होगा इनको, यहाँ से देखते होंगे सब जगह नजर आती होगी। किसी होटल में आप बुकिंग कराते हैं तो ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं ताकि वहां से बड़ा ही खूबसूरत नजारा हो। तो ये यहाँ पे ये इन ये इनको यहाँ पे जन्नत जन्नत वो मिलेगी जो आली है, ऊपर है, ताकि दूर दूर तक बैठ के सीनरी से लुत्फानंदोज हो सके, दायरा दूर दूर तक जन्नत ही नजर आएगी, इंसान को अपनी जन्नत नजर आ रही होगी। पर जिस सबसे ऊंची जन्नत कौन सी है? जन्नतुल फिरदौस। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए दुआ करो, और हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम थोड़ी भी जन्नत मिल गई नीचे की भी तो कोई बात नहीं है। क्यों? दुनिया में तो नहीं कभी आप कहते कि कोई बात नहीं, मुझे एक झुग्गी भी मिल जाए, कहीं मुझे कच्ची बस्ती में एक मिट्टी का मकान मिल जाए, कोई बात नहीं मैं वो भी लेके रह लूंगी, कोई बात नहीं गुजारा ही करना ना, 70-80 साल की जिंदगी गुजारनी है ना, ये तो कोई भी नहीं कहता। मगर हमेशा की जिंदगी के लिए कहते थोड़ी सी जन्नत भी मिल जाए कोई बात नहीं। क्यों? इसलिए कि दुनिया से मोहब्बत बहुत है और आखरत से मोहब्बत नहीं है। वो है ना, बल तो सिरून अल हयात दुनिया, वाकई इंसान दुनिया की जिंदगी से बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए उसके शौक यहाँ के तो हैं वहां के नहीं है, इसलिए वो यहाँ की चीजों को तरजीह देता है वहां की नहीं। आप देखे जॉब को तरजीह देते हैं, नींद को तरजीह देते हैं, घरों को तरजीह देते हैं, शॉपिंग को तरजीह देते हैं, सदका करने को नहीं देते, नमाज पढ़ने को नहीं देते, फजर पे उठने को नहीं देते, मस्जिद भागने को नहीं देते। तो प्रायोरिटीज अपनी देख लें, हम नहीं सोचते कि हमें ये चीज तो आखरत में काम आ जाने वाली है। मुझे अगर मैं जन्नत, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी साइकी जो है ना उसके मुताबिक बात की है, जन्नतुल फिरदौस की जो दुआ करेगा इसका मतलब उसने हाई एम्स रखे हैं। तो हमें कहा गया हाई एम रखो, जब हाई एम इंसान रखता है ना, देखिए जिस बच्चे को यह कि मैंने पोजीशन लेनी है, क्या उसकी मेहनत उतनी होती है जो कहता है दूसरा कहता है मैंने बस पास होना है, इक्वल मेहनत करते नहीं। जिसने पोजीशन लेनी हो वो तो कोई दिन ना रात वो हर वक्त ही पढ़ाई में लगा, जिसने बस पास होना है ना उसकी उतनी मेहनत नहीं होती, जिसने पोजीशन लेते वो सारा साल ही मेहनत करता है कि मेरा इम्तिहान है, वो एक दिन पहले बैठ के नहीं मेहनत करता। दोनों में फर्क है। तो कहा गया फिरदौस की जो दुआ करो, यानी उस हाई एम्स रखो, फिर उसके मुताबिक जब इंसान का एम हाई होगा उसके मुताबिक कोशिश होगी, उसके मुताबिक मेहनत होगी, जन्नत आलिया। कैसी जन्नत है? ला तस्माउ फीहा लागिया, उसमें कोई लग बात नहीं सुनेंगे, ला तस्माउ ये सारी उन चेहरों की बात आ रही है, वो नहीं सुनेंगे उसमें कोई लग बात, यानी कोई बेहूदा बात, कोई यूजलेस बात, वल्गर बात, ऐसी बात जिसको सुन के इंसान का दिल खराब हो जाता है। दुनिया में तो ऐसी बातें आप ना भी सुनना चाहते हैं ना कहीं से आपके कानों में पड़ी जाएगी, जो आपका दिल खराब कर दे, जो आपका सारा दिन बर्बाद कर दे। आप कितने भी आलीशान महल में रहते हो, कहीं ना कहीं से किसी का कोई कमेंट सुन लेंगे, किसी की कोई हर्टफुल बात आपको उसको कानों में पड़ जाएगी, या फिर कहीं कोई खबरें ही सुन लेंगे जिससे दिल खराब हो जाता है, या फिर और कोई ऐसी बात आ जाएगी आपके सामने जिससे आपका सारा मजा खराब हो जाएगा। कोई किसी ने आपसे झूठ बोल दिया, किसी ने कोई फजूल बात आपको कह दी, यूजलेस बात कह दी, बेसोचे समझे कुछ बात मुंह से निकाल दी, कोई बेहयाई की बेशर्मी की बात, ये सारी लघु बातें, वो वहां पे कोई लग बात नहीं सुनेंगे, सलाम उन सलामा होगा, सलामती की बातें, सलामती की चीजें, जो दिल को खुश कर देने वाली बातें हो। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला कितना मेहरबान है कि उसने जन्नतियों के कानों में क्या बात जाए, कहीं उससे भी उनका मजा खराब ना हो जाए, कहीं खुशी खराब ना हो जाए, इस चीज का भी ख्याल रखा। लगे ये कितनी बारीक बात है, जब नेमते मिल जाए इंसान कभी सोचता है कि मैं ये भी दुआ करूं कि अल्लाह मेरे लिए मेरे कानों में कोई ऐसी बात ना जाए। नेमतों के लिए इंसान बहुत सारी चीजें, घर की दुआ करता है, गाड़ी की दुआ करता है, अच्छे रहन सहन की दुआ करता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि ये देखो ये भी तो एक नेमत है कि उसके कान में कोई लग बात ना जाए। ला यस्माउना फीहा लगवा वला तथीमा, पहले भी आया ना, कोई गुनाह की बात, कोई ऐसी बात जो इंसान के दिल को छलनी कर देने वाली हो वो नहीं सुनता, बेसकून जो कर दे वो नहीं सुनेगी उसको। दुनिया में तो ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती है, ये सिर्फ जन्नत में हो सकती है। फीहा आइनुन जारिया, इसमें चश्मे होंगे जो बहते होंगे, रवा होंगे, ऐसे चश्मों के पास बैठे होंगे जिनका पानी बहता होगा, यानी इंसान ना बहते पानी को देख के उसको सुकून हासिल होता है, इसलिए लोग अपनी थेरेपी के लिए भी जाते हैं, समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं, बीच पे देखते रहते हैं, लहरें आ रही हैं, टकरा रही हैं, जा रही हैं, वो उसको सुकून देता है। यहाँ पे किसी चश्मे, किसी लेक पे जाके बैठ जाते हैं, वो बहता पानी इंसान को अच्छा लगता है। फ्लोइंग वाटर, जारी है, जारी, आइन चश्मा। तो ऐसी नजर को भाने के लिए भी ऐसे मनाजिर होंगे। देखें, वैसे तो उनको अच्छा पानी भी दिया जा सकता था, और मशरूबात की आप बात पहले पढ़ चुके हैं, तो वो भी उनके लिए बेहतरीन है, लेकिन नजर के लिए, कि नजर भी लज्जत पाए, उसके लिए खूबसूरत मनाजिर होंगे। और उनमें एक मंजर क्या है, बहते चश्मे। हर एक इंसान चाहता है उसका घर एक ऐसी जगह पे हो जहां से वो खूबसूरत नजारा करे, कोई लेक हो, कोई पानी हो। और इसकी वजह से दुनिया में भी ऐसी जगह बनाई जाती है कि पानी के किनारे हो, उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो जन्नत में आप देखें, नहरों की बात कहीं आती है, कहीं चश्मों की बात आती है। बहते चश्मे भी बड़े खूबसूरत लगते हैं, और लोग बल्कि पिकनिक के लिए ऐसी जगहों पे जाते हैं। फीहा सुरूर मरफूआ, उनके पास ऐसे सुरूर होंगे, शरीर की जमा सुरूर, चारपाई को कहते हैं, काउच को कहते हैं, सुरूर जो मरफूआ है, बुलंद होंगे। यानी बुलंद क्यों, देखिए जब ऊंचे बैठे होंगे तो बैठे बैठे वहां से नजारा कर सकेंगे ना। अब नीचे कोई मसनद हो, कोई काउच हो, कोई लेटने की जगह हो, रिक्लाइनर हो, तो वहां से तो नजर नहीं आएगा। तो ये उन्होंने चूंकि अपनी जन्नत वहां से देखनी है, और उसको उसके लिए उठने की भी जरूरत नहीं, लेटे लेटे ही उनको वहां से नजर आ रही होगी, उनके लिए इतनी ऊंची मसनदें होंगी। अल्लाह अकबर। व अकवाब मौजूआ, और अकवाब कौब की जमा, प्याले। और प्याले ऐसे कौब कहते हैं उसको जो जिसमें हैंडल नहीं होता। देखिए, अब आपको दिखाया जा रहा है ऐसा सीन जिसमें वाटरफॉल भी है। अब दुनिया में और नहीं कोई मिलता तो आजकल आर्टिफिशियल फाउंटेन्स ही बना लिए गए घर में, आप उसको स्विच से चला दो, आबशार की सी आवाज आएगी, इंसान को कितनी अच्छी लगती है रिलैक्सेशन के लिए वो। तो जब सोचे नेचुरल ऐसे झरने हों, गिर रहे हों, उनकी आवाज भी है, और एक मसमा है, और एक खूबसूरती है देखने के लिए भी, और काउचेस पे बैठे मजा कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। जब भी सुरूर की बात आएगी, ऐसे ऐसी मसनदों की बात आएगी, तो रिलैक्सेशन का जहन में आता है। रिक्लाइनर पे इंसान रिलैक्स करता है, कभी भी आप ऑफिस चेयर पे रिलैक्सेशन वाली तरह की नहीं होती वो, क्योंकि उस पर काम करना होता है, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे शरीर है। ऐसे रिक्लाइनर्स जो ऊंचे हैं, ऊंचे हैं, अल्लाह हू अकबर। और फिर ऐसे कौब है, अब देखिए ऊंचे से ये भी याद आता है ना, स्टेज पे स्टेज बनाए जाते हैं ना, ये वहां से लोग, वहां से कोई भी स्पीकर है तो बैठ के सबको देख सके, और इसी वजह से ऊंचाई होती है ना, तो इनकी भी ऊंचाई इसी वजह से कि दूर तक नजारा मिल सके। अल्लाह अकबर। दुनिया में तो देखें ऐसी मसनदें या ऐसे ऐसे ऐसी जगह इंसान को बोल तो मिलती नहीं। अगर कहीं किसी को थोड़ा बहुत कोई अपना ड्राइंग रूम ही सजा लेता है, तो वो भी वक्ती इस्तेमाल करता है, बाकी सारा वक्त इतने उसको कमाई करने और इतना उसको मेहनत करने में उसका टाइम लग जाता है इन चीजों को मेंटेन करने के लिए, कि इनको एंजॉय करने का भी इसको वक्त नहीं मिलता। तो अब आगे ना क्रॉकरी की बात आ रही है, क्रॉकरी भी, अब ये चीजें खास तौर पे औरतों को बहुत पसंद होती, क्रॉकरी, कपड़े, फिर इस तरह की चीजें और घर की सजावट का सामान। तो क्रॉकरी कैसी होगी, कि क्रॉकरी भी सेट होगी पहले से। जैसे आप किसी बड़े होटल में चले जाना, तो उन्होंने नैपकिन, चम्मच, प्लेट, कांटा, ग्लास सब कुछ पहले से सेट करके रखे होते। तो ये कौब जो होंगे ना, अकवाब जिसकी जमा जो है, ऐसे कप्स होंगे जो जिसको कहेंगे कि जो जाम है, जाम उसके लिए, ये कौब के लिए ज्यादा जाम का लफ्ज सही है, जो आप कहते हैं ना ये शैंपेन ग्लासेस, इसकी स्टैम्प भी होती, तो वो टेबल पे मौजू आ वजा किए गए होंगे। वजह करना मतलब रखे हुए होंगे, पहले से रखे होंगे, पहले से टेबल सेट होगी या पहले से वो जगह सेट होगी जहां पे उन्होंने खाने खाने हैं या जहां एंजॉय करना है। यानी आप क्रॉकरी को देख के भी मजा आएगा, अभी तो खाना नहीं आया, अभी क्रॉकरी सेट हुई भी है पहले से। ये वहां की मजलिस बताई जा रही है जिसमें रिक्लाइनर्स हैं, चश्मे बह रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं सुन रही जो कि फजूल बात हो आपने खबरें लगा के, वरना इंसान कहीं वेकेशन पे चला जाए वहां पे भी खबरें देखता रहता है, खबरें सुन सुन के ही इंसान का दिल खराब होता रहता है। तो कोई ऐसी चीज नहीं, फोन पे कोई तंग नहीं कर रहा, कोई ऐसा टेक्स्ट नहीं भेज रहा जिससे कि कोई तबीयत खराब हो, और क्रॉकरी सेट है, व नमारिकु मसफूफा, और तकिए सफ दर सर, मसफूफा सबसे, नमारिक नून मीम रा काफ इसका रूट है, ऐसे तकिए, ऐसे कुशंस जो छोटे छोटे होते हैं ना उनके लिए नमारिक का, यानी बहुत सारे सफ दर सफ पड़े हुए हैं मसनदों पे, और तकिए पे इंसान कहता है कैसे होता है, अच्छा तकिए पे बैठ के पीछे टेक लगा के कोई बच्चा बैठा हो तो आप कहते हैं सीधे होके बैठो काम करो, इसका मतलब है तकिए पे आप टेक लगा के नहीं बैठ सकते काम करने के लिए, तो इनको कोई काम नहीं है, सिर्फ इंजॉयमेंट है, रिलैक्सेशन है, इसलिए तकियों के ऊपर टेक लगा के बैठे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम व जरा बी यू, और जरा भी कालीन के लिए आता है, मबसूस है बस फैले हुए के साथ बिछा के रखे हुए, ऐसे कालीन है, यानी आप सोचें कि रग्स हैं जो बिछे हुए हैं हदे निगाह तक पूरी मजलिस में, यानी ऐसी मजलिस का मंजर पेश किया जा रहा है जिसमें कुशंस भी हैं, रिक्लाइनर्स भी, और आपको पता है आज भी जो कीमती रग्स होते हैं वो लाखों में उनकी प्राइस जाती है, और वो कितने खूबसूरत लगते हैं, जब भी किसी ने अपने घर को सजाना होता है वो एक कीमती रग का इंतखाब करता है। तो आप ऐसी मजलिस का अंदाजा करें जहां पे रग्स बिछे हुए हैं और लग्जूरियस रग्स हैं और दूर तक बिछे ही हुए हैं। अल्लाह अकबर, एक बहुत ही कीमती ड्राइंग रूम का मंजर है। तो वो इसको एंजॉय कर रहे होंगे, आप देख लेना, एक झलक दिखाई जा रही है, झलक भी नहीं है, उससे भी कम हम तो सोच ही नहीं सकते, हमारे जहन भी कितने महदूद सोच के मालिक है कि हम इन चीजों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते जो जन्नत की और ना ही जहन्नुम की, और हमें दोनों चीजें दिखा दी गई कि देखो एक तरफ ये तकलीफ है और एक तरफ ये सुकून और राहत का इंतजाम है। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, दोनों बराबर नहीं है, जन्नत वाले कामयाब हैं, इसका मकसद क्या है हमें ये सब दिखाने का कि जब हम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हो तो सारी मेहनतें सारी एनर्जीज यहाँ ही ना लगा दें बल्कि इसको हासिल करने के लिए लगाएं, सारी अपनी दौड़ धूप का सेंटर यहीं को ना बना लें बल्कि इस जहन्नुम से बचने के लिए दौड़ धूप करें, अपनी दुनियावी जिंदगी में ही मगन ना हो जाएं, बल्कि ये सोच लें कि ये फानी है और हमेशा की जिंदगी तो ये जिंदगी है जिसमें यहाँ तो जन्नत है और यहाँ जहन्नम है, अब इसमें से तुम क्या चूज करते और किसको मकसद बनाते। जब तक इंसान इसकी फिक्र ना करे और इसके लिए एम ना करे, इसके लिए प्लानिंग ना करे, वो इसको हासिल नहीं कर सकता। तो अपनी दुनिया में जरूरियात को जरूर पाना है, उनके लिए भी इंसान को काम करना है, लेकिन इसको भुला के नहीं कि आखरत है, ये ना हो कि तुम्हारा इल्म सारा दुनिया की जिंदगी तक ही महदूद हो जाए, ये ना हो कि तुम्हारी कोशिशें सारी यहीं तक की होके रह जाए, क्योंकि इसका एक इख्तिताम भी है, इसके बाद एक नई जिंदगी है जहां पे ये देखो दोनों चीजें अब तुम्हारी मर्जी की किसको प्रायोरिटाइज करते हैं। अगर इंसान को ये समझ आ जाए ना ये बातें, तो वो अल्लाह की रजा को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना ले, अपनी आखरत के इस घर को पाने के लिए दिन रात एक करते, जैसे हमारे असलाफ ने किया, हमारे बड़ों ने किया, और गुनाह करना उसके लिए जहर से ज्यादा और आग में जलने से भी ज्यादा मुश्किल बन जाए। तो ये तो आखरत के मनाजिर की जरा सी झलक है, हम पूरी तरह इनको समझ नहीं सकते, मगर बस अल्लाह ताला ने झलक दिखा के और हमें समझा दिया कि सोचो वो जगह फिर असल में कैसी होगी, अगर तसव्वुर में ही कितना मजा आने लगता है, लेकिन ये उसी को मिल सकती है जो आखरत को अपना टारगेट बनाए। जानते हैं मोमिन कौन होता है? हदीस में आता है इसके बारे में कि ये वो है जिस की नुके उसके मालिक के हाथ में, उस ऊंट की तरह है जिसकी नुकेल उसके मालिक के हाथ में। जैसे आप देखें ऊंट वगैरह की नुकेल होती है ना, तो वो नुकेल से उसका मालिक उसको खींच के जिधर चाहता ले जाता है, जिधर मोड़ता है वो मुड़ जाता है। गर्दन भी नहीं कहा गया, गर्दन में भी हो तो गर्दन भी इंसान पीछे को पुल कर सकता है कि नहीं मैंने जाना, जैसे आप बकरी वगैरह की गर्दन में होती है ना, तो आप उसको खींचते वो पीछे को पुल करती है अपने आप को, वो नहीं आना चाहती। तो ये नहीं कहा गया जिसकी गर्दन में रस्सी, जिसकी नुकेल उसके मालिक के हाथ में। वाकई मेरी नुकेल मेरे मालिक के हाथ में है कि जिधर चाहे मुझे लेके चला जाए और मैं समय न हुआ ताना करते हुए पीछे चल पड़ू, जो उसका रब कहे उसके आगे सर झुका ले, जैसे इब्राहिम अलैहि सलाम थे, इस काला लहू रब्बू अस्लिम काला अस्लम तो रब्बिल आलमीन, उसके रब ने उसको जब फरमाया मती हो जा, फरमा बरदार हो जा, सरेंडर कर दे, फौरन सरेंडर कर दिए। तो उन लोगों की तरह नहीं होना जिन्होंने अब ख्वाहिशात को अपना इलाह बना लिया, जो ख्वाहिश कहती है वैसे ही करते हैं, जो दिल चाहता है वैसे ही चलते हैं। फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुछ निशानियां दिखाई, इन निशानियों से अपने रब को पहचानो। वैसे तो अल्लाह ताला की पहचान हर चीज दे रही है, हर चीज में हमें अल्लाह ताला की निशानी नजर आती है, वो बता रही है जुबाने हाल से उसका बनाने वाला कैसा है, कायनात का जर्रा जर्रा बता रहा है। लेकिन यहाँ पे चार चीजों का जिक्र आया जो अरब में बद्दू लोग अपने सामने देखते थे। पहली चीज, अफला यंदुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, क्या उन्होंने नहीं देखते वो ऊंट की तरफ किस तरह पैदा किया गया? ऊंट वो जानवर है जो अरबों को बड़ा महबूब भी था और वो उनकी रोजमर्रा जिंदगी उसके ऊपर ही गुजरती थी, क्योंकि जिस तरह उसको कहते हैं ना रेगिस्तान का जहाज, यानी जो ये काम कर सकता है डेजर्ट में और कोई नहीं कर सकता, कई कई दिन बगैर खाए पिए रह सकता है, स्टोर कर लेता है अपने अंदर पानी को, पानी ना भी मिले तो चल सकता है, आई लैशेस ऐसी हैं कि डेजर्ट स्टॉर्म में ये आराम से देख सकता है, बहुत सारा सामान अपने ऊपर लाद सकता है, इसके पैर रेत में फंसते नहीं है, चलता रहता है रेत में, तो बहुत तरह की इसके अंदर गौर तलब चीजें हैं। इसको देखा नहीं है अल्लाह ताला ने, कैसे इसको पैदा किया खुद सोचो, वह इला समा कैफ रुफिया, और आसमान को किस तरह ऊंचा किया, एक बद्दू अपनी जिंदगी में देख सकता है उसकी जिंदगी में क्या है, आसमान सर पे आसमान है, जमीन पैरों के नीचे है, पहाड़ है और उसका ऊंट है बस। तो वो ही चार चीजें दिखाई गई। आज का इंसान तो बहुत सारी चीजें देख के अल्लाह ताला के कमाले कुदरत को जान सकता है, कमाले हिकमत को जान सकता है, कमाले इल्म को जान सकता है, कमाले अजमत को जान सकता है कि मेरा रब कैसा है। अल्लाह ताला रिमाइंडर दे रहा है, देखो इला समाई कई फरूफियत, आसमान को तो रोज देखते हो, आज ये भी देखो कि वो मालिक कैसा होगा जिसने बगैर सतूनों के इसको खड़ा कर दिया इस तरह। वह इलल जिबाली, और देखो पहाड़ को कैसे मुसीबत कैसे नसब किए गए। आज साईं समय इतना कुछ समझा देती है, कैसे ये पैक्ड है जमीन के अंदर, मेखों की तरह गड़े में जमीन में, उनसे तुम सोचते नहीं हो किसने पैदा कर दिया। वही लल अर्दी कई फसुतिहत, और जमीन की तरफ किस तरह बिछा दी गई है तुम्हारे लिए, मती हो गई है, बिछाई गई है, ऐसे बिछा दी गई है आराम से आप अपने काम करते फिर सकते। एक बद्दू कहने को किसी ने कहा कि तुम, उसने कहा मैं इसका इम्तिहान लेता हूं, तुम कैसे एक अल्लाह पे ईमान रखते हो, क्या सबूत है एक खुदा है। उसने कहा, वो ऊंट लेके जा रहा था, बद्दू आदमी था, उसने कहा ये देखो ये मेंगनी जो ऊंट की है ये उठा के ही पता चल जाता है कि ऊंट यहां से गुजरा, हाँ इससे ही पता चल जाता है, तो इतनी बड़ी कायनात से नहीं पता चल रहा कि एक खुदा है इसका बनाने वाला, या तुम एक ऊंट का पता लगा लेते हो लेकिन ये नहीं समझ आती इतनी सारी चीजें देख के भी कि एक खुदा है जिसकी ये कारीगरी है, जिसकी ये कायनात है। फदक्किर, पस नसीहत करते रहे, रिमाइंडर देते रहे, रिमाइंड कराते रहे। मैंने आपको क्या बताया, रिमाइंडर काम आता है, क्योंकि अगर हर कोई ये सोचे मैं क्यों रिमाइंडर दूं, मैं क्यों किसी को बताऊं, मैं क्यों नसीहत करूं, तो क्या होगा, बुराइयां फैलती जाएंगी। आप जब सब ये काम पकड़ लें कि मैंने नसीहत करनी है, मैंने कहना है ये गलत है ये नहीं है सही, तो फिर ही बुराइयां खत्म होंगी। जकीर, नसीहत कीजिए, अगर वो नहीं भी बाज आता आप नसीहत करने, उससे क्या फायदा होगा, कम अज कम आप उस चीज से रुके रहेंगे। तो फदक्किर, रिमाइंड कराएं, इन्नम अंत मुजक्किर, आपका काम है नसीहत करते रहना। अगर आप नसीहत करने वाले हैं, आप मुजक्किर हैं, लस्त अलैहिम भी मुसैतिर, आप इनके ऊपर कोई दारोगा नहीं है कि आप इनके ऊपर कोई डंडा लेके खड़े हो जाएं और आपने इनको करवा के छोड़ना है, या अल्लाह ताला आपसे ये पूछेगा कि ये लोग क्यों जहन्नुम में जा रहे हैं, नहीं आप कंट्रोलर नहीं है इनके। इसी तरह आज उम्मत मुस्लिमा का भी काम तज़कीर करना है कि नसीहत कर दें, लोगों को रिमाइंड कराते जाएं एक आखरत के बारे में, अल्लाह ताला के बारे में, और हम सब भूलने वाले हैं, हमें रिमाइंडर मिलते रहने चाहिए। हम रिमाइंडर के बगैर अगर रहेंगे तो हम बिल्कुल भूल जाएंगे, इसलिए ये कुरान को भी जिक्र कहा गया, ये भी नसीहत है और रिमाइंडर है। इस रिमाइंडर से अपनी जिंदगी को खाली ना रखें, कितना जोर दिया गया ना रिमाइंडर का, देखें पिछली उसमें भी पहले भी हम बार बार ये पढ़ रहे हैं, तस्खीर करो, नसीहत करो, रिमाइंड करा दो, तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। हम ये ना कहें हमें पहले ही पता है, हमें पहले ही पता है आखरत है, हमें पहले ही पता है जन्नत है जहन्नुम है, हमें पहले ही पता है अल्लाह ताला का, हम क्यों, हमें क्या जरूरत है रिमाइंडर, नहीं रिमाइंडर की जरूरत है इसलिए कि हम भूल जाते हैं। हम सबको रिमाइंडर चाहिए, आप सीख भी लेंगे ना, ये कोर्स खत्म भी कर लेंगे तब भी ये ना सोचे रिमाइंडर से मैं फारिग हो गई, आपको तब भी इस कुरान की जरूरत है। याद दिहानी कोई कराने वाला होना चाहिए, याद दिहानी फायदा देती है, पहले आ गया ना, याद दिहानी फायदा देती है, क्योंकि ये इंसानी जरूरत है इसलिए कहा गया। फदक्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, किसको तो नसीहत करनी, सिर्फ काफरों को नहीं, हर एक को, जो मान जाए उसको भी करते रहे, जो ना माने उसको भी करते रहे, हो सकता है किसी को असर हो जाए, और किस वक्त असर हो जाए हम नहीं जानते। इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो लोग जो कहते हैं ना कब तक बताएं कब तक कहें, कहते रहें, हो सकता है असर हो जाए, मगर ये अपने आप को दारोगा ना बनाए कि हमने करवा के रहना है, चाहे बच्चे हैं चाहे कोई है, मनवा के रहना है और बस दारोगा बन जाना है इनके ऊपर, वो हमारा काम नहीं। आप इन पे कोई गार्ड नहीं है, आप इनके इंचार्ज नहीं है, इंचार्ज नहीं अल्लाह ताला ने बनाया आपको, बस बला कर दे पहुंचा दे और इफेक्टिवली पहुंचाने की कोशिश करें। देखें यहाँ पे जो पिछली उसके अंदर आया ना, इन नफाते दिक्रा, जो पिछली सूरत में है ना दिक्रा, इसमें भी सुपरलेटिव डिग्री है ना, सिर्फ जिक्र नहीं है, दिक्रा है। यानी इंसान वाकई पूरी तैयारी के साथ दूसरे को बताए कि किस तरह मैं ऐसे बात करूं कि दूसरे के दिल पे असर हो, और फिर इस तरह से कि वो बात में भी इतना वजन हो, दलील हो, बात दिल को नरम कर देने वाली हो, उसकी तैयारी करके फिर इंसान दूसरे को तस्कीर करे। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही बैठे बैठे किसी को कोई बात सेंस भी ना मेक कर रही हो और आप ऐसे ही कहते जा रहे हैं, उसकी बाकायदा तैयारी कीजिए। तो जिक्रा के साथ फायदा हो जाता है। लेकिन आप फिर भी दारोगा नहीं अगर फायदा नहीं होता, कभी ये ना सोच के चुप करके बैठ जाएं कि मैंने तो इतने अरसे से बता रही हूं कोई फायदा तो होता नहीं है, अब मैं तो थक गई हूं, या आप तो मैं डंडा पकड़ लूं। नहीं, ये नहीं, रिमाइंडर। अगर अल्लाह ताला ने जबरदस्ती लोगों को इस्लाम में दाखिल करना होता तो अल्लाह ताला कर सकता था। इल्ला मन तवल्ला व कफर, मगर ये कि जो मुंह मोड़ जाए और कुफर करे। आप रिमाइंड कराते रहें, आपका काम रिमाइंड कराना है, जो मुंह मोड़े इस पैगाम से और कुफर करे तो फायुअज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, अल्लाह ताला फिर उसको बड़ा अजाब देगा। उसको उसको जिसको समझ नहीं आ रही ना ये किस माने में है, ये इस माने में है कि हो सकता है कि यानी अगर आप रिमाइंड कराते रहेंगे तो हो सकता है कि कोई मान ले, आप दरोगा नहीं उन पे, मगर अगर कोई नहीं मानता, अगर कोई नहीं फिर भी तवज्जो करता, याद दहानी का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और वो मुंह में मोड़े रखता है और कुफर करता है, तो उसके लिए अल्लाह ताला के पास बड़ा अजाब है। तो जिसके पास मैसेज आ जाए वो तवज्जो ना करे, उस मैसेज को किसी काबिल ही ना समझे, अस्तग़फिरुल्लाह, या मैसेज सुन के भी अनसुनी कर दे, तो फिर उसके लिए अजाब है। तो तस्कीर करते रहें, उसको भी करते रहें जो मुंह मोड़े और कुफर करे, ये माना है। इन्ना इलैना इयाबहुम, बेशक हमारी ही तरफ उनका लौटना है, पलटना तो एक दिन हमारी ही तरफ ही है, लौट कर आना तो हमारे पास ही है, कहीं जाएंगे तो नहीं। आज अगर नहीं मान रहे तो ये थोड़ी है कि उसके बाद कहीं और चले जाए। अभी हमने पिछली सूरत जो देखी थी फमुलाकी, सूरह इंशिकाक में, तुमने मिलना तो अल्लाह ताला से है, मुलाकात तो है, स्केड्यूल्ड है वो। तुम इन आलैना हिसाबहुम, फिर हमारे जिम्मे इनका हिसाब लेना। बास सलफ सालेहीन जो थे ना पहले, वो ये सिर्फ दो आयतें 25 और 26 ये आयतें सुन के बेहोश हो जाते थे, उनकी रातों की नींदें उड़ जाती थी कि हाँ कैसे अल्लाह ताला का सामना करेंगे, कैसे हम हिसाब देंगे। इतना उनके ऊपर असर होता था इसका कि बीमार पड़ जाते थे लोग, तीमारदारी करने आते थे। तो इसका जवाब होना चाहिए अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाब यसीरा, अल्लाह हमारा आसान हिसाब लेना, अल्लाह हमारा आसान हिसाब लेना। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान को अल्लाह ताला के आगे हाजिर होना पड़ेगा, और ऐसी हालत में कि ना कोई उसका तर्जुमान होगा और ना ही उसका कोई वकील होगा अल्लाह के पास, यानी अकेले अल्लाह ताला के सामने आके खड़ा होना पड़ेगा। और फिर आपने फरमाया आदमी अपने दाएं तरफ देखेगा तो उसको अपने आमाल नजर आएंगे, बाएं तरफ देखेगा तो भी अपने आमाल नजर आएंगे, और सामने देखेगा तो उसको कुछ और नहीं नजर आएगा सिवाय जहन्नम की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम से बचो चाहे एक खजूर का टुकड़ा देखे, बचो इससे जहन्नम से। ये ऐसी जगह है कि इससे बचने का इंतजाम करो या नहीं, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, खजूर ही दे दो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इंसान इस रिमाइंडर्स को सुनता रहे, क्योंकि इंसान के ऊपर माहौल के भी असरात होते हैं, ख्वाहिशात भी होती हैं, बहुत तरह की टेम्पटेशंस है इस दुनिया में। इंसान अपने आप को वापस लेकर आए, फिर गुम हो जाएगा, फिर वापस लाए, फिर गुम हो जाएगा, फिर वापस लाए, और देखे अल्लाह ताला की निशानियों को, देखे जो कायनात में फैली हुई है, अल्लाह ताला की ना आयात को पढ़े जो कुरान में। तो अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम की आग से महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें जन्नत वालों में दाखिल फरमा दे।
यहाँ पे हिसाब हम की बात आई है, और हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि जिसका अल्लाह ताला ने हिसाब कर लिया उसके लिए तो हलाकत है। यानी अल्लाह ताला ने एक दफा भी पूछ लिया ना अगर कि ये काम क्यों किया, तो इंसान जवाब नहीं दे सकेगा फिर। इसीलिए अल्लाहुम्मा हासिब ना हिसाब यसीरा, ये दुआ बहुत मांगनी चाहिए। और इसलिए असलाफ इतना डरते थे, तूने अगर हिसाब ले लिया तो हम क्या कहेंगे। दूसरी बात यह कि किसी के जिम्मे किसी का हिसाब नहीं है, कोई किसी का हिसाब लेना शुरू कर दे तो कि अल्लाह ताला ही है जो हिसाब लेने वाला है। फाइनल जो इंसान की डेस्टिनेशन है वो अल्लाह ताला के पास ही है, जहां से कोई भी भाग नहीं सकेगा। तो ये सूरत लुगाशिया थी, जिसने वाकई ढांप लेने वाली सूरत। अब आप तिलावत सुनिए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.